नमस्कार, आप सुन रहे हैं नवभारत गोल्ड का स्पेशल पॉडकास्ट।
तेलंगाना में वोटिंग से महज 3 दिन पहले के चंद्रशेखर राव की भारत राष्ट्र समिति सरकार को बड़ा झटका लगा है। चुनाव आयोग ने राज्य सरकार की रायथु बंधु योजना पर रोक लगा दी। इस योजना के तहत किसानों को फसलों के लिए वित्तीय मदद दी जाती है। राज्य के वित्त मंत्री टी हरीश राव ने सार्वजनिक रूप से इसकी किश्त जारी करने की घोषणा कर दी थी, जिसे चुनाव आयोग ने आचार संहिता का उल्लंघन माना। तो कितना बड़ा झटका है ये बीआरएस के लिए और इसका चुनावों पर क्या असर पड़ेगा, ये जानने के लिए बात करते हैं नवभारत टाइम्स की असिस्टेंट एडिटर मंजरी चतुर्वेदी से, जो तेलंगाना की चुनावी हलचल कवर कर रही हैं। मंजरी जी, सबसे पहले तो ये बताएं कि क्या है ये रायथु बंधु योजना और मतदान से ठीक पहले राज्य सरकार ने इसकी किस्त जारी करने का ऐलान कैसे कर दिया?
देखिए, रायथु बंधु योजना जो है वो किसानों को वित्तीय मदद देने से जुड़ी हुई है और रायतु का मतलब तेलुगु में होता है किसान। तो ये देखा जाए तो सीधे सीधे किसानों को मदद देने के लिए एक योजना है सरकार की, केसीआर सरकार की। इसमें सरकार जो है प्रति एकड़ साल में 2 बार 5,000 रुपए की किश्त देती है, मतलब 5,000 रुपए की किश्त प्रति एकड़ वो हर किसान को देती है हर साल, साल में 2 बार रवि और खरीफ की फसलों के लिए। तो अभी इस बार ये किश्त दी जानी थी, लेकिन चुनाव के वजह से कहा जा रहा है कि एक एलिगेशन ये लग रहा है कि सरकार ने इस योजना को, इसका पैसा देने में थोड़ा सा देर किया। उन्होंने कहा चुनाव के आसपास देंगे, लेकिन बीच में चूंकि 1.5-2 महीने का एक आचार संहिता लग जाती है, तो पिछले दिनों उनके जो वित्त मंत्री थे टी हरीश राव, उन्होंने ऐलान किया कि 24 तारीख को हम किसानों को जो इस बार की किस्त है वो हम उन लोगों को जारी करेंगे। और इसके लिए उन्होंने बाकायदा चुनाव आयोग से परमिशन भी ली, चुनाव आयोग ने उनको परमिशन दे दी। लेकिन इसी बीच में जो विपक्षी दल थे, कांग्रेस वगैरह, वो लोग आचार संहिता का हवाला देते हुए वो चले गए चुनाव आयोग में और उन्होंने कहा कि ये तो सरासर उल्लंघन है, क्योंकि मतदान की वोटिंग चल रही है, आचार संहिता लगी हुई है, और उसमें कोई भी पार्टी, भले ही वो सरकार में हो, वो ऐसे जनहित के कार्यों में पैसे कैसे बांट सकती है। तो सीधे सीधे मतदाता को प्रभावित करने वाला काम हुआ। तो उनकी अपील पर चुनाव आयोग को ये कदम उठाना पड़ा और उन्होंने इसको ये जो पैसा जारी होना था उस पर रोक लगा दी।
तो ये कितना बड़ा झटका है बीआरएस के लिए, वोटिंग से ठीक पहले किस्त बांटने पर रोक लगने का, क्या उसे नुकसान हो सकता है?
देखिए, राजनीति जो है ना वो अवसर में, आपदा में अवसर ढूंढती है। तो अगर आप इसे बीआरएस के लिए एक झटका मान रहे हैं, तो मैं इसे झटका इसलिए नहीं मान रही हूँ कि बीआरएस के लिए, कि मतलब बीआरएस को इस चीज की आशंका थी, वो पहले तैयार थी, क्योंकि वो लगातार मतदाताओं में, वोटर्स में, जमीन पर लोगों के बीच में ये प्रचारित कर रही थी कि देखिए अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो वो ये रायथु बंधु योजना को बंद कर देगी। मतलब केसीआर ने तो यहाँ तक कहा कि अगर कांग्रेस सरकार में आती है तो वो इसको बंगाल की खाड़ी में फेंक देगी। तो अब जो बीआरएस है उसकी योजना ये है कि वो लोगों के बीच जाके चुनाव से ठीक 3 दिन पहले अगर इस तरह की इस पर रोक लगाएगी तो वो उसको अपने पक्ष में भुनाएगी। वो कहेगी देखिए कांग्रेस वगैरह चुनाव आयोग के पास गए और उन्होंने आप जो पैसा आपको मिलना चाहिए आपको पैसे देने में अड़ंगा लगाया, तो वो उसको इस तरह से प्रचारित करेगी अपने पक्ष में। और जबकि कांग्रेस वगैरह तो उसको वैसे ही लगातार कह रहे हैं कि हम ये जो है ये इसका सरासर उल्लंघन है। तो दोनों ही पक्ष इसको अपने वो करेंगे। मैं अक्षय जी एक बात यहाँ बता दूं कि मई 2018 से केसीआर सरकार जो है वो साल में 2 बार ये किसानों को पैसा बांट रही है। अब तक इससे 58 लाख किसानों को हर साल, साल में 2 बार पैसा मिलता है। और इस बार का जो केसीआर का बीआरएस का जो मैनिफेस्टो है उसमें उसने ऐलान किया है कि अब ये जो हर साल 10,000 की राशि दी जाती है उसको बढ़ा के हम 16,000 कर देंगे।
राज्य के गठन के बाद से ही लगातार सत्ता में बरकरार केसीआर अपनी कुर्सी बचाए रखने के लिए इस बार पूरा जोर लगाते दिख रहे हैं, क्योंकि उन्हें बीजेपी और कांग्रेस दोनों से बराबर की टक्कर मिल रही है और एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर भी होगा। तो वे किन मुद्दों के सहारे वापसी की कोशिश कर रहे हैं?
देखिए, केसीआर का जो पूरा चुनावी वो है, अगर कहें हम प्रचार है, तो वो अपनी जनहित की योजनाओं को लेकर लोगों के बीच जा रहे हैं। और इसमें एक मैं बात बता दूं, मैं तेलंगाना में लगातार घूम रही हूँ और घूमी हूँ, तो वहां पे जमीन में लोग मान रहे हैं कि केसीआर ने काम किया है। गजवेल, कामारेड्डी, सिरसिला वगैरह तमाम ऐसे इलाके हैं कि जहाँ पे लोग कहते हैं कि आज से 9-10 साल पहले इस इलाके की शक्ल ऐसी नहीं थी जो शक्ल आज आपको दिखाई दे रही है। लेकिन यहाँ पे हमें एक बात और नहीं भूलनी चाहिए कि जो एक बहुत बड़ा तबका है, वो तबका अब बदलाव भी चाहता है। मतलब मैं बहुत सारे युवाओं से मिली, अगर हम मुद्दों की बात करें अक्षय जी यहाँ पे, तो मुद्दे एक तरफ जो लोग हैं कि जैसे इनकी शादी मुबारक योजना है या गृह लक्ष्मी योजना है, जिसमें शादी होती है तो लड़की को सरकार की तरफ से 1 लाख रुपया मिलता है, इसी तरह डिलीवरी के लिए पैसा दिया जाता है, किसानों को पैसा दिया जाता है, ये लोग दलित बंधु योजना लेकर आए जिसमें दलितों को 10 लाख रुपए की राशि दी जाती है, और वो कोई लोन नहीं होता है, वो सरकार की तरफ से ग्रांट दी जाती है कि आप अगर कोई भी अपना काम शुरू करना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, तो आप उसका इस्तेमाल कर लेते हैं। तो बेसिकली वो दलित समुदाय के अपलिफ्टमेंट के लिए थी, और सरकार ने इसमें इतना फ्लेक्सिबल वो रखा कि ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ कारोबार करिए। अगर आपको लगता है कि आपको घर बनाना है तो आप उस 10 लाख से घर बना सकते हैं, आपको लगता है गाड़ी खरीदनी है तो आप गाड़ी खरीद दीजिए, और सरकार इससे आपसे कोई हिसाब नहीं मांगेगी, कुछ नहीं मांगेगी। ऐसे ही ये माइनॉरिटी के लिए भी लेके आए। लेकिन अब जो दिक्कत दिखाई दे रही है, इसी तरह से वो 2 BHK घर लेके आएगी, जिनके पास घर नहीं है उनको 2 BHK घर देंगे। लेकिन हो ये रहा है कि इस चुनाव में यही सारी योजनाएं आज उनके लिए एक गले में फांस बनती दिखाई दे रही है, क्योंकि जो वोटर है वो कह रहा है कि आपने बड़े बड़े दावे किए, बड़े बड़े बात किए, लेकिन हो क्या आज 2 BHK हम लोगों को मिला नहीं, एक मुट्ठी भर लोगों को मिला, या दलित बंधु योजना जो है आपने एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में 500 बेनिफिशियरी की लिस्ट तैयार की लेकिन उसमें से एक या दो लोगों को मिला, तो जो बाकी बचे हुए लोग थे जिनकी लिस्ट तैयार हुई वो लोग बहुत नाराज हैं और वो निराश हैं।
जाहिर है BRS सरकार में है तो लोग सीधे उससे ये सवाल कर सकते हैं कि आप जो भी वादे कर रहे हैं ये तो आपने अभी तक पूरे किए नहीं, तो आप किस आधार पर ये बोल रहे हैं? तो BRS के जो ये चुनावी वादे हैं, ये जो योजनाएं हैं, अब सवाल ये कि इन पर कांग्रेस की गारंटी कितनी भारी पड़ सकती है, क्योंकि कांग्रेस ने राज्य में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। राहुल गांधी तो राज्य सरकार को आड़े हाथ ले ही रहे, कर्नाटक के CM, डिप्टी CM समेत वहां का आधा मंत्रिमंडल यहाँ के चुनाव प्रचार में कूद पड़ा है। कर्नाटक के ही फॉर्मूले को अपनाते हुए कांग्रेस यहाँ 6 गारंटी देने का वादा कर रही है, तो इसका कैसा असर दिखा आपको वहां?
देखिए, ये जो कांग्रेस की गारंटियां हैं वो लोगों को अपील कर रही हैं। देखिए, पहले से ही राज्य राज्य में जो एक वहां की जो जनता है, जो एक बड़ा तबका है, वो फ्री बीज का आदी हो चुका है। तो ऐसे में अभी हाल ही में जो कर्नाटक में इन्होंने अपनी गारंटी दी, और कांग्रेस का दावा है कि उसने अपनी 6 गारंटीज में से 4 गारंटीज को लागू भी कर दिया है, तो कहीं ना कहीं ये दक्षिण का राज्य है कर्नाटक, और उसके जैसा कि आपने खुद कहा कि मंत्री लोग आ रहे हैं, बल्कि जनता का भी आना जाना है इलाकों में, लोग एक दूसरे राज्य से आते हैं, खबरें आती हैं, तो ये बात आ रही है कि कांग्रेस ने जो वादे किए थे उसको जमीन पर उतारना भी शुरू कर दिया, उसके लिए काम कर रही है। तो कहीं ना कहीं ये चीज भी लोगों को एक अपील कर रही है कांग्रेस की तरफ से। एक चीज मैं बताऊं कि इस तेलंगाना की जनता में कई जगह गई, तेलंगाना के लोगों के बीच कहीं ना कहीं एक भावना है कि तेलंगाना जो राज्य है वो सोनिया अम्मा ने दिया था। उनको लगता है कि उस वक्त पिछले 2 बार हमने जो कांग्रेस का ड्यू था तेलंगाना देने के बाद, जो हमें उन्हें मिलना चाहिए था, जो कांग्रेस ने भी यही सोचकर राज्य का आंध्रा के 2 हिस्से किए थे, तो उसे लग रहा था कि अगर आंध्रा में लॉस होगा तो हमें तेलंगाना में गेन होगा, क्योंकि तेलंगाना राज्य हमने बनाया है। लेकिन वहां पे ये सारा जो क्रेडिट था वो KCR और TRS ले गए। तो अब लोगों को लगता है कि सोनिया अम्मा के साथ जो एक हम लोगों से भूल हुई है, उनको जो उनको ड्यू मिलना चाहिए वो था वो नहीं मिला, तो इस बार 2 बार हमने उनको मौका नहीं दिया, लेकिन तीसरी बार वो कांग्रेस और सोनिया अम्मा डिजर्व करती हैं कि उनको मौका दिया जाए। और जैसा कि मैंने कहा कि अनएम्प्लॉयमेंट को जो लेके ना जमीन पर बहुत नाराजगी है केसीआर सरकार के खिलाफ, और मुझे इतने ऐसे ऐसे युवा मिले, इंजीनियर्स मिले जो नौकरी कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, लेकिन उनका कहना था कि नहीं, दो बार मौका दे दिया केसीआर सरकार को, अब सरकार बदलनी चाहिए और हमें दूसरों को भी मौका देना चाहिए। तो ये जो सब चीजें हैं उसे देखते हुए मुझे कांग्रेस के लिए एक अच्छी संभावना दिख रही है। एक और कांग्रेस की संभावना के पीछे वजह ये है कि अगर आप देखें तो कुछ इलाके हैं प्रदेश के, जैसे खम्मम, वारंगल, करीमनगर, महबूबनगर, आदिलाबाद, ये सब जो इलाके थे ये सब कभी टीडीपी प्रभाव वाले थे और इस बार टीडीपी कहीं मुकाबले में नहीं है। तो उन्होंने टीडीपी ने कांग्रेस का समर्थन किया है, तो माना जा रहा है जो टीडीपी का वोट बैंक है वो कांग्रेस को मिलेगा। इसी तरह से कुछ पॉकेट्स में लेफ्ट है, लेफ्ट का सिर्फ एक ही जगह पे उन्होंने सीपीआई ने कांग्रेस के साथ तालमेल करके उठा अपना एक उम्मीदवार उतारा है। फिर वाईएसआरटीपी की जो शर्मिला है, वाईएस जगन रेड्डी की बहन शर्मिला, उनका तेलंगाना का जो अपना चैप्टर है, उन्होंने भी कांग्रेस के समर्थन के लिए बात की है कि अपना समर्थन देने का। तो मुझे लग रहा है कि अगर बीजेपी और बीआरएस छोड़ा जाए तो जो जितना वोट बैंक है वो सब दल कांग्रेस की तरफ लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो कांग्रेस के लिए बेहतर चांसेस दिख रहे हैं।
हम देख रहे हैं कि तेलंगाना में मुस्लिम वोटर्स को लुभाने के लिए भी कांग्रेस और बीआरएस दोनों एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं। बीआरएस उनके लिए अलग आईटी पार्क की बात कर रही, तो कांग्रेस आरक्षण देने और कर्ज में रियायत देने का वादा कर रही है। ऐसे में बीजेपी किस दांव के भरोसे चल रही है? पीएम मोदी यहाँ पर कैंपेन कर रहे हैं, क्या यहाँ भी मोदी फैक्टर के भरोसे ही है बीजेपी?
देखिए, ये तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि तेलंगाना में जो बीजेपी है वो मोदी के भरोसे बहुत आगे तक जा रही है। हालांकि आपने अगर अल्पसंख्यकों की बात करें उनके संदर्भ में कहा जाए तो जो 4% आरक्षण मिलता है देने की बात है मुस्लिम तबके को, तो उन्होंने कहा कि अगर हम, बीजेपी कहती है कि अगर हम सरकार में आएंगे तो ये हम 4% का जो आरक्षण की बात है उसको हम विड्रॉ कर लेंगे। तो कहीं ना कहीं बीजेपी यहाँ पे एक साफ मैसेज दे रही है कि हमारा जो वोट बैंक है वो जो मेजोरिटी वोट बैंक है वही हमारा वोटर्स है और हमें उसी की जरूरत है, माइनॉरिटी की हमें इतनी जरूरत नहीं है। और वो उसको बहुत ज्यादा उस पर वो आधारित भी नहीं है। जहां तक आपने माइनॉरिटी की बात की तो यहाँ पे आज बीआरएस में जाता है वोट बैंक, लेकिन अगर आप तेलंगाना की राजनीति में माइनॉरिटी सियासत की बात करें तो उसका सबसे बड़ा चेहरा है असदुद्दीन ओवैसी और उनकी एमआईएम पार्टी। अब दिक्कत यह है कि जो ओवैसी हैं वो पूरे राज्य में मुस्लिम जो वोटर है 13% मुस्लिम वोटर उनके वो अपने को खुद को रहनुमा, स्वघोषित रहनुमा है वो उसके। वो पूरे भारत में जाके यूपी में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में तमाम सीटों पे लड़ते हैं, लेकिन जो उनका गृह राज्य है तेलंगाना वो अभी तक 7 राज्यों पे लड़ रहे थे और इस बार 9 राज्यों पे लड़ रहे हैं। तो और बीआरएस और ओवैसी की जो पार्टी है उन दोनों में आपसी अंडरस्टैंडिंग भी है कि हम भाई जिन 9 सीटों पे लड़ रहे हैं वहां पे छोड़ के बाकी राज्य में जितने भी मुस्लिम बहुल सीटें हैं उनमें हम जो वोट है माइनॉरिटी का वो हम आपको दिलाएंगे। और लगभग 43 ऐसी सीटें हैं जहाँ पे जो मुस्लिम समुदाय है वो हार जीत का समीकरण तय करता है। तो ये बिल्कुल, और ऐसे में माना जा रहा है कि जो कांग्रेस ने वहां कर्नाटक में किया अल्प, तो मुस्लिमों का भरोसा कांग्रेस की तरफ लौटा है। तो इस बार जो नामपल्ली और मलकपेट का जो इलाका है, ये गढ़ कहे जाते हैं ओवैसी के, वो इस बार ओवैसी के हाथ से फिसलते दिख रहे हैं, खास करके नामपल्ली। तो ओवैसी बहुत मशक्कत कर रहे हैं, बहुत जोर लगा रहे हैं कि किसी तरह से उनकी साख बची रहे।
जी, और शायद यही वजह है कि वो इस बार बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस को भी लपेट रहे हैं हिंदुत्व के मुद्दे पर, कि राहुल गांधी को हिंदुत्व की याद आ रही है क्योंकि उन्हें यह एहसास है कि उनका मुस्लिम वोट कांग्रेस की ओर शिफ्ट हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया मंजरी जी आपका इस एनालिसिस के लिए।